ओम शांति। हम सभी ने अलौकिक जन्म लिया है। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल, क्या है भक्ति का फल, सत्य ज्ञान दिया है। आधा कल्प से हम भक्ति करते रहे। हरेक के जीवन में धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कोई ना कोई पुरुषार्थ चलता रहे। और इसके पीछे दो लक्ष्य होते हैं, क्यों भक्ति साधना धर्म क्यों करते हैं। एक तो लक्ष्य है आत्मशुद्धि, कि हम पापों से मुक्त हो जाएं, विकारों से मुक्त हो जाएं। आरती में भी क्या गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, हाँ, पाप हरु देवा, है ना? क्योंकि भक्ति में आत्मा में शक्ति नहीं, इसलिए भगवान को कहते हैं कि हमारे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। सच्चे भक्त इसी लक्ष्य से भक्ति करते हैं, क्योंकि समझते तो है कि विषय विकार ही दुख और अशांति का मूल कारण। तो आत्मशुद्धि, कोई व्रत करते, कोई उपवास करते, कोई यात्रा करते, कोई तीर्थों पर जाते, गुरुओं के चरण में जाते, लक्ष्य यही है कि हमारा उद्धार करो, सुधार करो। ये तो आजकल के कलयुगी भक्ति में अल्पकाल की इच्छाएं, मनोकामनाओं से भक्ति करते हैं। जैसे आज बाबा ने भी कहा ना कि कोई दिल से बाबा को प्यार करते और कोई मतलब से करते, कोई मजबूरी से करते, पर सच्चे बाबा के बच्चे होंगे वो दिल से प्यार करते। तो एक आत्म शुद्धि के लक्ष्य से भक्ति करते और दूसरा प्रभु मिलन, भगवान से मिलन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। प्रभु मिलन के लिए भक्ति करते हैं। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य सत्य ज्ञान हमें मिला है। निश्चय है हाँ, पक्का है कि हमें अनेक जन्मों की भक्ति का फल भगवान मिले हैं, भगवान का सत्य ज्ञान मिला है। भक्ति में भावना है, श्रद्धा है, पर सत्य ज्ञान नहीं। हम कौन है, परमात्मा कौन है, देवताएं कौन है, संसार का खेल कैसे चलता है, कर्म की गहन गति क्या है, धर्म का सही अर्थ क्या है, कुछ भी पता नहीं। बाबा कहते हैं ना कि कथा सुनते हैं और सत वचन कहते रहते हैं, सत्य क्या है वो पता नहीं, पर हम आत्माएं भाग्यशाली हैं। कल्प पहले वाली देवता धर्म की हम आत्माएं हैं जो बाबा का सत्य ज्ञान मिलते ही निश्चय हो गया कि ये कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं, ज्ञानदाता कौन है, स्वयं शिव बाबा है। हमें निश्चय है, रोज भगवान हमें पढ़ाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो कौन सी पढ़ाई हम पढ़ रहे क्या आपको कोई पूछे तो क्या बताते, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कर रहे, शरीर से मनुष्य हैं परंतु कर्मों से, संस्कारों से, चलन से तो पतित बन गए। इसलिए कहते हैं ना कि जानवर से भी बदतर बन गए थे, परंतु बाबा ने आकर रोज सत्य ज्ञान सुनाकर हमें पवित्र बनाया, योगी बनाया। बाबा का पहला वरदान कौन सा है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने सत्य ज्ञान देकर नया जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया है, जिसको मरजीवा जन्म हम कहते हैं। जीते जी कलियुगी संस्कारों से मर गए, अब हम सच्चे पक्के ब्राह्मण बच्चे बने हैं। तो जब हम जीवन में, क्योंकि हमें प्रथम लेसन से ही हमारी आंखें खुल गई, पहला पाठ कौन सा है हमारा, मैं आत्मा हूं, हर एक आत्मा है, एक ही बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो प्रथम पाठ से ही जीवन बदल गया, कहां हम खुद को देह समझते थे, देहभान में रहते थे और इंद्रिय रसों में डूबे रहते थे, क्योंकि देह समझते थे तो खाना पीना सोना यही जिंदगी थी, दुनियादारी, घर गृहस्थी नौकरी धंधा समाज संसार, वही बातें हम सोचते रहते थे। पर जब से हमें बाबा का ज्ञान मिला, निश्चय हुआ, तीसरा नेत्र खुला, तो लक्ष्य बदल गया ना, कि हमारा जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए, केवल दुनियादारी के लिए नहीं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए, स्व उन्नति के लिए। तो जब बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में नियम संयम की धारणा होती है, डिसिप्लिन लाइफ में आती है, हम एक लक्ष्य से जीवन जी रहे हैं। भाई मनुष्य से देवता बनना माना क्या बनना है, क्या धारणाएं करनी, जैसे भाई कोई डॉक्टर बनना है तो भी मेडिकल लाइन में जाएगा, वहां वो बातें उनको सिखाई जाएगी, इंजीनियर बनना है तो वो बातें सिखाई जाएगी। तो देवता बनना माना क्या बनना है। बाबा ने अभी एक मुरली में कहा था ना, कोई सिर्फ देवता ही कपड़े पहनने की बात नहीं है। हाँ, जैसे फिल्मों में कई एक्टर्स धार्मिक फिल्मों में कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, कोई राम बनेगा, कोई सीता बनेगा, कोई हनुमान बनेगा, तो वो तो सिर्फ कपड़े पहनकर एक्टिंग करने की बात है। सच में कोई देवता बनने का पुरुषार्थ थोड़ी करते हा? पर हम प्रैक्टिकल में देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सारे आदि मध्यांत के राज बता दिए कि ये कलयुग अंत का समय है। ये कलयुग अंत और सतयुग आदि के संधि काल संगम युग का समय है। खुद बाबा सृष्टि पर आए हैं, हमें पतित से पावन मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो ये समय कौन सा चल रहा है, हम कौन हैं, बाबा से हमारे क्या संबंध है, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। तो अगर मुझे मनुष्य से देवता बनना है तो देवता बनना माना क्या बनना है। ज्ञानी और योगी हम बने हैं, और ज्ञान और योग के पुरुषार्थ द्वारा। हाँ, देवताओं की महिमा क्या है बताओ। सर्वगुण संपन्न। बाबा ने ज्ञान और योग दो साधन हमें दिए जिसके द्वारा ये सब कुछ जीवन में लाना है। सर्वगुण संपन्न, एक भी अवगुण होता है तो इंप्रेशन खराब हो जाती है। एक अवगुण हमें गिरा देता है, उस अवगुण से दूसरे को दुख भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सभी गुण धारण कर दे। वैल्यूज की लिस्ट तो पड़ी है ना, कौन कौन से दैवी गुण हैं? 36 गुण, 56 गुण, जो भी दैवी गुण है, अंतर्मुखता, हर्षित मुखता, सरलता, नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता, पवित्रता, ये सारे दैवी गुण हैं जो जीवन में धारण करने हैं। तो इसकी एक सहज ही युक्ति मैं आपको बताते हैं। भाई सर्व गुण धारण करना है तो आज ये गुण कल वो गुण कितना पुरुषार्थ करेंगे, पर बाबा ने उसकी सहज विधि बताई है कि हमारे जो मूल 7 गुण है, आत्मा के मूल 7 गुण कौन कौन से हैं? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये हमारी अनादि गुण है। तो बाबा कहते हैं इन 7 गुणों से ही अनेक दैवी गुण बनते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते तो पता होगा, प्राइमरी में आता था कि मूल रंग है 3, मूल रंग है 3, लाल, पीला और नीला, जो हमारे त्रिलोक में दिखाए गए। इन 3 रंगों से आज कितने कलर्स बने, है ना? पता है ना, 150 से भी ज्यादा वैरायटी कलर शेड्स बने। मूल रंग 3 है, ऐसे मूल गुण 7। इन 7 गुणों से ही अनेक दैवी गुण बनते हैं। इसलिए संगम युग में हम रोज अपने 7 गुणों को याद करते हैं, इमर्ज करते हैं। देखो, योग में बैठते हैं तो हम साइलेंस में बैठकर सेल्फ रियलाइजेशन करते कि मैं आत्मा ओरिजिनली शांत हूं, शुद्ध हूं, सत्य हूं, पवित्र हूं, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। इसको रियलाइज करना है कि बाबा इन 7 गुणों का स्वरूप है, सागर है, और मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप हूं। तो जितना हम इसको गहराई से महसूस करते हैं कि मैं आत्मा ओरिजिनली शुद्ध हूं, सत्य हूं, पवित्र हूं, तो हमारे अंदर इन दैवी अटेंशन रहेगा ना कि भी मेरी ओरिजिनलिटी पवित्रता है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को भूलते हैं, देहभान में आते हैं, तो विषय विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए देखो हमें स्वच्छता अच्छी लगती है, स्वच्छता अच्छी लगती है कि गंदगी अच्छी लगती, क्या अच्छा लगता? स्वच्छता अच्छी लगती है। और बाबा के बनने से देखो जीवन में कितनी स्वच्छता आ गई, रोज स्नान करते हैं। अगर दिन में कोई टॉयलेट जाता है, लेटरिन जाता है, तो भी हम स्नान करते हैं, है ना? वही कपड़े वापस नहीं पहनते हैं, चेंज करते हैं। ये शुद्धि है, स्वच्छता। अज्ञान काल में तो पता है ना, एक ही टॉवेल सब पोछते रहेंगे, एक ही साबुन से नहाते रहेंगे, पर बाबा के बनने के बाद हम स्वच्छता रखते हैं। हरेक का टॉवेल अपना अपना, हरेक का साबुन अपना अपना, है ना? शरीर के हिसाब से भी ये स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। फिर हम देखो खान पान की भी शुद्धि रखते हैं, बाहर का नहीं खाते, नहीं खाते है ना? हाँ भाई बहने, नियम पक्का किया है ना? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, है ना? तो जब हम अपने आप को पवित्र देवता बना रहे हैं, तो हमें कैसा भोजन लेना है? सात्विक, शुद्ध, शाकाहारी भोजन करना। क्योंकि जब हम अपने मन को शुद्ध, आत्मा को शुद्ध करना माना, मन बुद्धि और संस्कार को शुद्ध करना, तो मन पर असर डालने वाली जो बातें हैं उसको हमें शुद्ध करना पड़ेगा। अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और बाबा की याद में भोजन स्वीकार करते हैं। पवित्र योगी के हाथ का ही हम खाते हैं, जहां तहां किसी के घरों में प्रसंगों में खाते रहेंगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं बनेगी ना। तो हम अन्न शुद्धि का नियम रखते, व्यसनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भी मन को गुलाम बनाते, आदत पड़ जाती है फिर रह नहीं पाते हैं, है ना? व्यसन के शिकार बनते रहते हैं। तो व्यसन भी सबने छोड़ दिए है ना? नहीं तो बाबा के घर आए हैं, सबसे महान तीर्थ स्थान पर आए हैं, कोई भी व्यसन हो तो बाबा को स्वाहा कर, क्योंकि वो भी आदत मन को गुलाम बना। हमें तो मन को सभी बातों से मुक्त कर कहां लगाना है? बाबा में लगाना, इस दुनिया से पार परमधाम में बाबा से योग लगाना। तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए। अब हम अशुद्ध आहार विहार नहीं कर सकते, कोई भी बीड़ी सिगरेट तमाकू गुटखा शराब, पता नहीं कितने प्रकार के दुनिया में व्यसन होते हैं, और जानते हो ना जीवन कितने बर्बाद हो जाते हैं, कितने पैसे फालतू व्यर्थ खर्च हो जाते हैं। बाबा के बने कितना फायदा हो गया, जीवन बदल गया, व्यसनों से छूट गए, होटलों से मुक्त हो गए। बाबा कहता है घर में बना के खुद खाओ, स्वच्छ भी बनेगा, खर्चा भी कम आएगा और शुद्ध भोजन मिलेगा। तो ये हमारे मूलभूत नियम है। ज्ञान समझा मीन्स हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, वरना ज्ञान क्या समझा। भाई मैं यहां से नीचे उतरने जाऊंगी तो गिर पड़ूंगी क्योंकि सीढ़ी नहीं है। तो मुझे बताया जाता है बेंजी यहां से आप नहीं उतर सकते हैं, वहां सीढ़ी से आप उतर सकते। अगर वो बात मैंने समझी उसकी निशानी क्या है कि मैं सीढ़ी से उतरूंगी, यहां से गिरूंगी नहीं। तो हमने बाबा का सत्य ज्ञान समझा, इसका निशानी है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, अपवित्रता खत्म होगी, शुद्धि धारण होती जाएगी, फिर हम कपड़े भी स्वच्छ मर्यादा पूर्ण पहनते, देह प्रदर्शन करने वाले कपड़े नहीं पहनते, मर्यादा पूर्ण वस्त्रों में रहते। देखो ऐसा यूनिफॉर्म दुनिया में और कहीं है? कमाल का बाबा ने ढूंढा ना कि हमारा अंग प्रदर्शन ना हो, किसी की बुद्धि शरीर में ना जाए, तो हम मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहनते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, गांधी जी ने कहा था ना। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं कि हमारा जीवन सादा, सरल और सात्विक सात्विक। हमारे अंदर से रजो तमो न दिखाई दे, हमारे बाल चाल कपड़े पर्स चप्पल सिंप्लिसिटी। तो बाबा के बनते ही देखो बुद्धि हमारी नहीं तो कपड़ों में फंसी रहती है। बहने बुद्धि कितनी कपड़ों में जाती, इसके साथ ये मैचिंग, उसके साथ वो मैचिंग। और दुनिया तो बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमानी है, विकारों के मार्ग पर है, इसलिए नए 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 कपड़े चीजें साधन वस्तुएं तेल साबुन क्रीम पाउडर कितना निकलता रहता है। पर बाबा ने हमारा जीवन सिंपल बना दिया, बाबा ने सफेद कपड़े पहनवाए, यूनिफॉर्म। ठीक है आप दुनिया में रहते हैं, लौकिक में रहते हैं, उस प्रसंग अनुसार कभी कुछ पहनना होता है, परंतु हमारी अपनी इच्छा नहीं है, शौक नहीं है, हमारी बुद्धि उसमें फंसती नहीं। तो स्वच्छ कपड़े सफेद वस्त्र हम पहनते हैं, और सफेद में तो कोई मैचिंग फैचिंग की बात ही नहीं है ना। शुद्धता स्वच्छता, क्योंकि ये सब चीजें बुद्धि को खींचने वाली, बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली। देखो नए कपड़े भी अगर हम पहनते हैं और रोज के कपड़े पहनते हैं, पर जब नए पहनते हैं तो बुद्धि चार बार जाती है ना कपड़े में। नए हैं तो संभालना है संभालना है, तो बुद्धि तो जाती है ना। मैं एक प्रसंग आपको बताती हूँ, विनोबा भावे का तो नाम सुना है ना, सर्वोदय लीडर थे। वो भी बहुत गांधी जी की तरह ही जीवन चरित्र की बातें बताते थे। तो एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और वो स्टेशन था जहां फूलों के हार जो बहने बालों में लगाते हैं ना गजरे, वो बहुत प्रसिद्ध थे वहां के। तो विनोबा भावे के कंपार्टमेंट में जो बहुत सारी लेडीज थी, तो उन्होंने वो फूलों के हार खरीदे और अपने अपने बालों में लगाए। गाड़ी आगे चली, विनोबा भावे ने उन बहनों से पूछा कि आपने जो फूलों के हार बालों में लगाए हैं वो आपको दिखाई देते हैं? तो उन्होंने कहा दिखाई देते हैं बहने? नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं। तो बोला किसको दिखाने के लिए फिर पहने? तो देखो है ना, दूसरों की बुद्धि तो जाती है ना, दूसरों को आकर्षण होता है। इसलिए बाबा ने शुरू में जब बाबा ने बहनों को, बाबा कुछ भी पहनाते नहीं थे, कान में, नाक में, गले में, हाथ में, बालों में कुछ भी नहीं। तो उस समय के किसी ने पूछा बाबा को कि बाबा आप इन बहनों को कुछ पहनाते क्यों नहीं? तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। बाबा ने कहा कि देखो, कोई भी गाय को, भैंस को, बैल को, घोड़े को कंट्रोल करना हो तो क्या करते हैं? उनके नाक से, गले से रस्सियां डालते हैं ना, और उससे उनको कंट्रोल करते हैं। बहने नाजुक हैं तो रस्सियां तो नहीं डाल सकते ना। तो बाबा ने कहा ये जो नाक में, कान में, गले में जो गहने पहनते हैं, ये रॉयल रस्सियां हैं, ये रॉयल रस्सियां हैं, क्योंकि इससे स्त्री भान पक्का हो जाता है। और जब दूसरों के द्वारा दिए गए नाक के, कान के, गले के, हाथ के गहने स्वीकार करते हैं तो वो स्त्री बंध जाती है ना उस पुरुष से। शादी एंगेजमेंट में ऐसे ही करते हैं ना। तो बाबा इन बहनों को परवश करना नहीं चाहते, बाबा इन बहनों को बॉडी कॉन्शियस बनाना नहीं चाहते। इसलिए बाबा ने स्त्री भान न आवे, स्त्री शरीर का भान न आवे, इसलिए बाबा ने कुछ भी नहीं पहनाया कि आत्मा शक्ति है, आत्मा शक्ति है ना। स्त्री समझेंगे तो कोमलता आएगी, नाजुकता आएगी। इसलिए सिंपल लाइफ, क्योंकि शुरू में तो सब समर्पित थे। अब आप सबको बाबा का आदेश है कि आपको घर गृहस्थ में रहना है, परंतु घर गृहस्थ में रहते हुए कैसा रहना है? कमल फूल समान। इसलिए देहभान उत्पन्न करे, विकार मन में उत्पन्न करे, ऐसे कपड़े भी नहीं पहनना है, ऐसा मेकअप भी नहीं करना है, ऐसा आहार भी नहीं खाना है, ऐसी कोई आदतों के वश भी नहीं होना। तो ज्ञान में आते ही देखो ये धारणाएं हो जाती है। स्वच्छता के बाद पवित्रता हमारे जीवन में आती, ब्रह्मचर्य का हम पालन करते। क्योंकि बिना पवित्रता योगी बन नहीं सकते हैं। भक्ति में भी कहते थे ना कि मन में या तो राम रह सकता है या तो काम रह सकता है। अगर काम वासना है तो भगवान से योग नहीं लगेगा। बार बार देह में बुद्धि जाएगी, देह दृष्टि से देखते रहे। इसलिए रोज बाबा कौन सा पाठ पक्का कराते, रोज अनेक बार बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। तो ये पाठ पक्का है कि हम एक बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई है, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम भाई बहन। तो हमारे में विकारी दृष्टि नहीं, हर संबंध को पवित्र बनाना है। इसलिए हमारा विद्यालय, बाबा ने जब से ज्ञान यज्ञ ये रचा, शुरू से हमारे विद्यालय की कौन सी विशेषता गाई हुई, कौन सी? पवित्रता। बाबा कहते हैं ना, शुरू से पवित्रता के नाम पर झगड़े होते हैं, क्योंकि मान लो पति ज्ञान में चलता है, पत्नी नहीं चलती है, एक पवित्र बनना चाहता है, दूसरा नहीं चाहेगा। पत्नी ज्ञान में है, पति ज्ञान में नहीं है, तो भी झगड़ा। पर भगवान का आदेश है, भगवान को हमारे से कौन सी मदद चाहिए, कौन सी मदद चाहिए? पवित्रता की मदद चाहिए, क्योंकि सतयुगी दुनिया स्थापन कर, काम वासना के कारण तो सारी गिरती कला हुई और कलयुग बन गया संसार। तो बाबा हम बच्चों से पवित्रता का सहयोग मांगते। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं प्रथम पाठ ही आप नहीं पढ़ सकते, आत्मभिमानी बन नहीं सके। जब खुद के शरीर को भूलना है तो दूसरे के शरीर को भोगने की तो बात ही नहीं है ना। तो ये वासना की दृष्टि नहीं, ब्रह्मचर्य हमारे यज्ञ की फंडामेंटल मुख्य धारणा। पक्का सच्चा ब्राह्मण बच्चा तब कहा जाएगा जब ब्रह्मचर्य का पालन करते। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं, अलौकिक जन्म नहीं कहे, उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्म तो अभी भी पतित है, शूद्र है। इसलिए बाबा से मिलन मनाने भी तभी आते थे जब ब्रह्मचर्य की धारणा। जो बाबा से मिले हैं वो हाथ ऊपर करो, जिन्होंने बाप दादा से मिलन, देखो ये पुराने बाबा के बच्चे। तो हम सबको पवित्रता में पास होना। बाबा कहते ना, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाना है। गीता में भी लिखा है ना, काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। पर बेचारे वो लोग गीता पढ़ते हैं, गीता ज्ञान धारण करने की तो आत्मा में शक्ति नहीं है। पर हम बाबा के बच्चे बच्चा गीता ज्ञान रोज सुनते हैं, रोज भगवान हमें पवित्र बनने की बात कहते हैं। इसलिए ये धारणा हमारे जीवन में पक्की हमें कर लेनी। उसके बाद आप देखो आपका पुरुषार्थ कितना तीव्र बन जाएगा, सहज बन जाएगा। फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों पर विजय पाने की भी शक्ति आ जाती है। इसलिए देखो, एक तो दैवी गुण धारण करना, सर्वगुण संपन्न बनना। दूसरी महिमा कौन सी है देवता बनने की? 16 कला संपूर्ण। 16 कला माना 1, 2, 3, 4, 5 की बात नहीं है, 16 कला संपूर्ण बनना माना परफेक्ट बनना। देखो, जो पूरा श्रृंगार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भई आपने तो आज 16 श्रृंगार किए हैं। जब चंद्रमा पूर्ण उगता है तो क्या कहते हैं? आज तो चंद्रमा 16 कला से खिला। और बुजुर्ग भाई बहनों को याद होगा, पहले कहते थे ना कि भाई ये बात 16 आनी सच है ना, क्योंकि 16 आने से एक पूर्ण रुपया बनता था। तो 16 कला संपूर्ण माना हर कर्म करने की कला हमारे में, हमें उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, सोना कैसे। हम योगी हैं, ज्ञानी आत्मा है, तो हमारा हर कर्म शुद्ध, दिव्य, श्रेष्ठ। हर कर्म की कला है ना, कहीं ऐसे चलेंगे दूसरे दो चार को धक्का लगा देंगे, कहीं ऐसे चलेंगे दो चार चीजें गिरा देंगे, नहीं। बाबा कहते उठने की, बैठने की, चलने की, देखने की, बोलने की, खाने की, सोने की, हर बात हमारी श्रेष्ठ, दिव्य। इसलिए हम रोज याद रखते हैं कि हम बाबा के पवित्र योगी बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ना, स्वमान याद रख। वो क्यों याद रखना? ताकि हर कर्म श्रेष्ठ, साधारण न। मम्मा ऐसे कहती थी, चलो तो ऐसे चलो जो धरती को भी दुख नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं धम धम करके चले, नहीं, शांति से अंतर्मुखी बन। तो जब पढ़ाई आचरण में आएगी तब तो लोग कहेंगे ना कि भाई इनके जीवन में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। हम रोज ओम शांति का पाठ पढ़ते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ओम शांति बोलो, ओम शांति कहो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ओम शांति बनो, ओम शांति लिखो, ये सब करने का मतलब क्या है? कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, ना घर में ना किसी के ऊपर। कई सोचते हैं हम बाहर तो शांति से ही व्यवहार करते हैं, पर घर में घर में गुस्सा करते रहते हैं तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना। कोई कहे कि मैं होटल का नहीं खाता, पर होटल का लाकर घर में खाता, तो इसको सही कहेंगे? ये तो ठगने की बात हो गई। इसलिए हमारे घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, अनजान हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, हमें शांति से व्यवहार। हम रोज योग में पक्का करते हैं ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान। अगर गुस्सा करते हैं तो देखो, बच्चे भी घर में कहेंगे कि मैं दीदी को बता दूंगा पापा घर में गुस्सा करते हैं। बच्चे भी हमारी चेकिंग करते, बाहर वाले लोग भी कहेंगे अरे भाई आप ओम शांति में जाते हैं और इतना गुस्सा करते है ना। वो भल कितना भी गुस्सा करे पर वो हमारी हमें पाठ पक्का कराते हैं ना कि भाई आप ओम शांति में जाते हैं, आपको वहां ऐसा सिखाते, क्योंकि उनको पता है बाबा का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है और यहां क्या सिखाया जाता। तो हमें अटेंशन रखना है कि कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनकी तरह गुस्से नहीं हो जाना। अगर बाबा के बनने के बाद भी गुस्सा करते रहते हैं तो आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा, सब आपसे दूर भागेंगे, कहेंगे बहन जी मैं अपने आप सेवा कर लूंगा लेकिन मैं इस भाई के साथ सेवा नहीं करूंगा, ये बहुत गुस्सा करते रहते। तो गुस्सा करने वाले को आत्माओं का प्यार नहीं मिले। इसी प्रकार जो मोह में फंसे रहते हैं, बच्चों में मोह, संबंधों में मोह, चीजों में मोह, जो मोह में फंसे रहते हैं उनको भगवान का प्यार नहीं मिले, सबसे बड़ा लॉस, क्योंकि उनकी बुद्धि उस व्यक्ति में, उस संबंध में फंसी रहे, उनकी बुद्धि भगवान तक उड़ेगी नहीं, ऊपर नहीं उठेगी। इसलिए गीता का कौन सा महावाक्य है, लास्ट 18वें अध्याय का, नष्टो मोहा तो स्मृति स्वरूप। देहधारियों से, देह संबंधों से मोह निकलेगा तो याद रहेगी, तो स्मृति स्वरूप। और लोभ अगर हम करते रहेंगे तो भाग्य नहीं बना सकेंगे। संगम युग है, हमें अपना तन मन धन सफल करना है, भगवान खुद कार्य रच कर बैठे हैं, हमें भगवान का मददगार बनना है। भक्ति में तो कहने के लिए सिर्फ कहते थे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर अब प्रैक्टिकल में बाबा को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, बाबा का भी हिस्सा निकालना है। बाबा ये नहीं कहता है तुम सब कुछ स्वाहा करो, बाबा कहते हैं तुम अपना घर संभालो, नौकरी धंधा करो, बच्चों की परवरिश करो, पर सेवा भी करो, बाबा के कार्य में भी लगाओ। भगवान के नाम सफल करने से और ही हमारा भंडारा भरपूर रहता है। बाबा उस धन में बरकत भरता है, शक्ति भरता है। इसलिए अब हमारा नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म है, कलियुग से मर जाना है। अब सतयुग के दैवी संस्कार हमें धारण करने, ये रोज पाठ पक्का करना, आचरण में आ जाए। बिना आचरण तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें पंडित नहीं बनना है, यहां हमें विद्वान नहीं बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, योगी हमें बनना। और योगी के लिए गीता में क्या कहा है कि योगी तो मेरा ही स्वरूप है, भगवान के गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, उसको कहते हैं योगी बनना। कर्म में धारण करेंगे तो मिलेगा ना, बिना किए तो कुछ मिलता नहीं। जो सोचेगा वो पाएगा या जो करेगा वो पाएगा? सोचने के बाद कर्म में लाना, ज्ञान सुना, बुद्धि से समझा, बुद्धि में भरा, धारण किया, पर कर्म में लाएंगे तो कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, तब भाग्य ऊंचा बनता। तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन के नियम और संयम है। बाबा ने पूरी दिनचर्या हमें बना के दी है। हमारी दिनचर्या कब से शुरू होती? अमृत वेले से। ज्ञान नहीं था, देरी से रात को सोते थे और सुबह भी देरी से उठते थे, पर अब हमारा लक्ष्य बदल गया तो दिनचर्या बदल गई। अब हम रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठे। अमृत वेला बाबा से मिलन मना, सुबह उठकर मन की आंख से सबसे पहले किसको देखना है? बाबा को देखना है। कहते हैं ना, सुबह उठकर सबसे पहले जिसका मुंह देखते हैं ऐसा दिन जाता है। ऐसे बोलते हैं ना लौकिक में भी कि भाई क्या हुआ, किसका मुंह देख के निकले थे, है ना? लोग दूसरों को दोषित करते रहते, पर बाबा ने हमें सिखाया और किसी को दोषित नहीं करना है। तुम अपनी दिनचर्या बदलो, सुबह उठकर सबसे पहले मन की आंख से बाबा को देखो और बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा से मिलन मना। तो बाबा की याद से दिनचर्या शुरू करते हैं, फिर स्नान आदि करके क्लास में आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, उस समय कौन सा स्वरूप रखना है? आज बाबा ने क्या कहा, गॉडली स्टूडेंट का स्वरूप। देखो, कहते हैं ना कि मन हो तो वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, मन चंगा तो कठोती में गंगा, कहते हैं ना। अगर हमारा अपना विल है कि मुझे अपना जीवन पवित्र और योगी बनाना ही है, भले हम इस दुनिया में रहते हैं, कलयुग में रहते हैं, पर किसका संग करना ना करना, करने पर भी किसका रंग लगाना ना लगाना, वो तो हमारे अपने हाथ में है ना, वो हमारे अपने निर्णय पर है। नौकरी धंधा करना, घर बार संभालना वो माया नहीं है। काम वासना, मोह, लोभ ये माया है, ये मनोविकार है। हमें इस पर जीत पाना। और इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम रोज क्लास करो, सेंटर पर जाओ, ऑनलाइन क्लास करो, खुद अभ्यास करो। अगर हमारा अपना लक्ष्य है तो दुनिया की कोई बुराई हमें टच नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने कमल फूल का लक्ष्य दिया कि कमल भी उगता कीचड़ से है, पर देखो अलिप्त रहता है, पानी भी नहीं टिकता है ना, पानी भी उस पर टिकता नहीं, तुरंत बह जाता। तो वो कीचड़ से अलिप्त रहता है। इस प्रकार अब तक तो विकारों में डुबके खाते रहे, जीवन पतित भ्रष्ट बन गया। अब भगवान आया है, सत्य ज्ञान रोज समझा रहा है और हम आत्माओं को जगा रहा है। हम हिम्मत करते हैं, बाबा हमें हजार गुना मदद करते हैं। इसलिए अगर रोज क्लास योग करेंगे और अपना लक्ष्य पक्का करेंगे तो हम इस दुनिया में रहते पवित्र योगी बन सकते। आज बाबा के लाखों बच्चे हैं, हजारों लाखों गृहस्थी भाई बहन। हम समर्पित तो 25,000 सिर्फ है जो पूरे विश्व में सेवा कर रहे हैं केंद्रों में, पर बाकी जो 10-12 लाख भाई बहने हैं वो तो अपने घर गृहस्थ में ही रहते हैं। आपके बीच में भी मैं कहूंगी जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे हैं, पूरे नियम धारणाओं में चलते हैं, वो खड़े हो जाए, देख लो है ना कितने बाबा के बच्चे हैं। एग्जाम्पल है ये सब। जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, अन्न शुद्धि रखते हैं, व्यसनों से मुक्त है, गंदे फिल्म नहीं देखते हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, ताली बजाओ इन सब के लिए। तो हमें इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत करना है। बाबा रोज ज्ञान देते हैं, शक्ति दे तो हम जरूर बने, हमें कोई रंग नहीं लगेगा, हमारा तुरंत अटेंशन जाएगा, ये गलत है मुझे नहीं करना, ये गलत है मुझे नहीं करना। पहले खुद की धारणा पक्की करो, दूसरों की बात नहीं, मुझे बनना है। ठीक है, तो सब बनेंगे ना, सब हाथ ऊपर करो। हमें अपने पवित्र जीवन का, योगी जीवन का सहयोग भगवान को देना ही। बहुत अच्छा, ओम शांति।